अपने जीवन में हुई एक घटना की याद आ रही है। हम फर्स्ट एमबीबीएस में थे और सिद्ध योग करने वाले कुछ प्रवचनकर्ता या योगी वहां पर आए थे और हम भगवान की खोज में थे। ऐसा नहीं था कहीं जो हो रहा जहां हम न जाए, और इससे छोटा एक हॉल था जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे और स्वामी मुक्तानंद के वो शिष्य वहां प्रवचन कर रहे थे जिसको सिद्ध योग कहते हैं। उस सभा में हम जाकर बैठे और प्रवचन पूरा हुआ और सब लोग जाने लगे और हम भी जाने लगे, तो वो जो महाराज थे, स्वामी थे, उन्होंने हमको रोक दिया और कहा इधर आओ। हमने कहा क्या, और उन्होंने हमको अपने सामने बिठाया बहुत देर बिठा के रखा और दृष्टि दी। हमने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा शक्तिपात। हमने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा ये शक्तियां तुम्हारे काम आएगी भविष्य में। किस तरह, उन्होंने कहा या फिर एक भविष्यवाणी की, तब हम तो ब्रह्मा कुमारी को जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा था शक्तियों से तुमको विश्व का कल्याण करना होगा। और बहुत लंबा समय तक वो देखते रहे और कुछ करते रहे, और यहां तक भी कहा था कि अगला एक हफ्ता तक इसका प्रयोग तुम किसी पर भी कर सकते हो, एक हफ्ता। और वो तो फर्स्ट ईयर था और वहां कॉलेज में डर रहता था रैगिंग का, तो हॉस्पिटल में तो जाते ही नहीं थे, क्लास पूरा करके सीधा रूम। फिर भी हमने एक मरीज पर वो प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था हाथ रख देना, तो शायद ठीक भी हुआ था। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शक्तियों का आदान प्रदान करते हैं। इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसफरेंस। धर्म को दिया और लिया जा सकता है, अध्यात्म की शक्ति को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए भक्ति मार्ग में तीन प्रकार की दीक्षाएं हैं। नयन दीक्षा, गुरु अपने दृष्टि मात्र से शिष्य में सारी शक्तियां भर देता है। स्पर्श दीक्षा, स्पर्श करते ही सारी शक्तियां शिष्य में चली जाती है, जैसे दिखाया है शंकराचार्य उनके गुरु ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और सारा वेद वेदांत सारा शास्त्र ज्ञान ट्रांसफर हो गया। और तीसरी है मंत्र दीक्षा, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और मंत्र दीक्षा। तो भक्ति मार्ग की ये बातें आज हमको याद आ रही थी कि भगवान जब धरा पर आया तो उसने भी एक एक ब्राह्मण आत्मा को अपनी शक्तियों से भर दिया, अलौकिक शक्तिपात। एक एक ब्राह्मण आत्मा को नयन दीक्षा दी, अपनी दृष्टि से ही आत्माओं की सृष्टि बदल दी। उसके अलौकिक स्पर्श ने चेतना में ऊर्जा उत्पन्न कर दी और उसके मंत्र ने जन जन से आत्मा जो देहधारियों की याद में दुखी थी, डूबी थी, उन सभी देहधारियों की याद से निकालकर मन मना भव मध्याजी भक्तो माम नमस्कुरु, एक निराकार में सबकी बुद्धि को लगा दिया। तो भक्ति मार्ग में जो दृष्टांत है वो यहां से निकले हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ बातें होती है उनका आधार स्तंभ संगम युग है। भगवान ने आकर जो कर्तव्य किए, जो अलौकिक कर्तव्य किए, उन सभी का यादगार भक्ति मार्ग में है। इसलिए हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो, अलौकिक हो। जैसे गीता में भगवान कहता है जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरे कर्म और मेरा जन्म दोनों दिव्य है। उसी तरह हमारा जन्म भी दिव्य है तो हमारे कर्म भी दिव्य हो। तो आज की इस भट्टी में सबको ये संकल्प से बैठना है कि यहां बैठे बैठे केवल सुनना नहीं है पर बीच बीच में अपने अंतर जगत में प्रवेश करना है, अपने ही जीवन को देखना है। जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक क्या खोया, क्या पाया, कौन सी गलतियां की, कौन से विकर्म हो गए, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी विकर्म हुए। बाबा के महावाक्य है ब्राह्मणों को 63 जन्मों के विकर्मों का नाश करने के लिए इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पापों को नाश करने में लगता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में एक का एक गुना था, यहां एक का 100 गुना है, पाप और पुण्य दोनों। और पाप और पुण्य की एक ही परिभाषा है, पाप अर्थात विस्मृति, पुण्य अर्थात स्मृति। तो इस भट्टी में यहां बैठे बैठे ऐसे समझना है कि जैसे यहां कोई दूसरा नहीं, केवल मैं हूं और मेरा जीवन है। और जो शब्द, जो वाक्य कानों पर पड़ेंगे उनको सुनते सुनते ही अपने अंदर प्रवेश करना, अपने आप को देखना। और इतनी बड़ी सभा में यदि संकल्प किया जाए तो वो सिद्ध होगा। क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति का बल नहीं है, संगठित बल है, संगठित ऊर्जा है इतनी सारी। ये सारा संसार यूनिवर्स वाइब्रेशंस का खेल है, समुद्र है प्रकंपनों का। हर व्यक्ति के मन से कुछ ना कुछ प्रकंपन निकल रहे हैं और संसार में जो प्रकंपन है वो व्यर्थ है और निगेटिव है और विकार है। ऐसे संसार में यदि महान आत्मा इकट्ठा हो जाए तो वहां जो प्रकंपन निर्माण होते हैं, वहां जो वायुमंडल निर्माण होता है वो अलौकिक और दिव्य होता है। और ऐसे वायुमंडल में, ऐसे प्रकंपनों के बीच जो संकल्प किया जाएगा वो सिद्ध होगा। वो कौन सी बात है, वो कौन सा विकार है, वो कौन सा संस्कार है, वो कौन सी आदत है, वो कौन सी एडिक्शन है, जो कौन सी बात है जो दिल को चुबा रही है अंदर ही अंदर, वो कौन सा पाप है सब कुछ जानते हुए जो हो गया, वो कौन सा विकर्म है जो ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद हो गया। उस घाव से, उस टीस से यहीं बैठे बैठे संकल्प से स्वयं को मुक्त कर देना है। तो इस भट्टी की शुरुआत हम एक योग के प्रयोग से करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और ये प्रयोग हर दिन 24 घंटे में कम से कम एक बार होना चाहिए। और वो प्रयोग है मधुबन की यात्रा। एक है शरीर से जाना और एक है सूक्ष्म रीति से जाना, मानसिक यात्रा करना। वहां के वाइब्रेशंस में प्रवेश करना, ऊर्जा से आत्मा को भरना और फिर वापस आना। तो चले वायुमंडल अव्यक्त, संपूर्ण मौन, स्थूल देह में विराजमान, ज्योति हो शरीर से डिटैच्ड, संसार के सारे चिंतन से परे, सारे लगाव, सारे मोह, सारी आसक्तियां, सारी चिंताएं एक तरफ, मैं दिव्य ज्योति हूं। चमकता हीरा, ज्योति का कण आकाश में उड़ रहा। ये संसार और इस संसार की सारी बातें यहां छोड़, सबसे उपराम सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश में अरावली पर्वतों के ऊपर मैं फरिश्ता, डबल लाइट, नीचे उतर रहा हूं मधुबन तपोभूमि, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि, मधुबन का आंगन, शांति स्तंभ के पास बच्चे, यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ के पास आ जाओ। शक्तियों की अनंत धाराएं शांति स्तंभ से मुझ में समा रही है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के बच्चे, अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे तो बाप तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। अब हिस्ट्री हॉल सभी पूर्वज उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर, यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। मन समर्थ संकल्पों से भर गया है, बाबा का कमरा, यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। मैं देख रहा हूं स्वयं को पांडव भवन मधुबन में, उड़कर मैं फरिश्ता पहुंचा बाबा की कुटिया। बच्चे, यदि उदास हो जाओ तो बाबा से रू रिहान करने कुटिया में आ जाओ। मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में ब्राह्मण आत्माओं की रिमझिम, पवित्रता की खुशबू मुझ में समा रही है। फिर आकाश में उड़ता मैं संसार और संसार की आत्माओं को पवित्रता की किरणें बिखेरता, प्रदान करता मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापस स्थूल शरीर में प्रवेश। मन फिर से शांत, बुद्धि स्थिर, इस सभा में बैठ के मैं आत्मा संकल्प करती हूं मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। सभी कमियों से मुक्त होना है, उसे की याद में खो जाना है और वही मेरा सर्वस्व है। हम ओम शांति। तो सभी ने यात्रा की मधुबन की, कि यात्रा रोज एक बार या दो बार करनी है। अमृत वेला, नुमा शाम और रात को सोने से पहले शरीर से निकल कर उड़ कर मधुबन भूमि पर चले जाना, चार धाम की यात्रा करना, वहां की ऊर्जा को अपने अंदर भरना, क्योंकि वो जो भूमि है साधारण भूमि नहीं है। धन्य भागवन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। स्वयं भगवान ने अपने पैर धरे हैं, तो हमारा आज का सबसे पहला विषय है डबल अलर्ट, डबल गार्ड। इस पर चर्चा करेंगे। गार्ड अर्थात पहरेदार, प्रतिहारी, वॉचमैन। शायद सभी ने सुना होगा, बारिश के देवता एक बार इंद्र सभी किसानों से बहुत नाराज हो गए और इंद्र ने कहा, अब मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। सारे किसान बहुत परेशान इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे, प्लीज। इंद्र ने कहा, नो, किसानों ने कहा, प्लीज। इंद्र ने कहा, ना, मैं नहीं बरसाऊंगा। किसानों ने फिर कहा, प्लीज प्लीज प्लीज। इंद्र ने कहा, ठीक है, बारिश मैं बरसाऊंगा, पर एक शर्त है, तभी बारिश बरसाऊंगा जब शिवजी अपना डमरू बजाएंगे, तब तो तुम लोगों को शिवजी के पास जाना पड़ेगा। अगर शिवजी अपना डमरू बजा दें तो मैं बारिश बरसाऊंगा। तो सारे किसान भागे दौड़े शिवजी के पास पहुंचते, परंतु इसके पहले कि शिवजी के पास वो किसान पहुंचे, इंद्र फोन करके उनको बता देता है कि किसान आएंगे, उनकी बात को मानना नहीं। तो किसान पहुंचते शिवजी के पास, शिवजी कहते, क्या? किसान कहते, डमरू बजाओ। शिवजी कहते, ना। किसान कहते, प्लीज। शिवजी कहते, नो। बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और किसान लौट आते हैं। अब 12 वर्ष तक कोई बारिश नहीं होगी, सभी किसान अपने अपने घर पर बैठ जाते हैं, पर एक किसान होता है जो कि हल चलाते रहता है खेत पर। सारे किसान आश्चर्यचकित होते हैं, पहले तो कुछ नहीं कहते, एक साल तक देखते रहते, पर एक साल के बाद, दो साल, तीन साल तक वो खेत पर, जमीन पर हल चला ही रहा है। सारे किसान उससे कहते, आखिर फायदा क्या, अगले 12 वर्ष तक बारिश नहीं आने वाली, तुम क्यों फिजूल मेहनत कर रहे हो? वो कहता है, मुझे पता है बारिश नहीं आएगी, परंतु अगर मैंने अभी हल नहीं चलाया तो हो सकता है 12 साल के बाद मैं भूल जाऊं खेती कैसे करनी है, इसके लिए मैं हल चला रहा हूं, प्रैक्टिस। और ये बात ऊपर पार्वती जी सुन लेती है और वो भाग के शिव जी के पास जाती है और कहती है, सुना, बारिश होने वाली नहीं है, फिर भी एक किसान अभी भी खेती कर रहा है, आपका क्या होगा? अगर 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो 12 साल के बाद डमरू बजाना ही भूल जाओगे। और जैसे ही शिव जी ये बात सुनते हैं, अपना डमरू लेते हैं और डम 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 डम, और फिर रिमझिम रिमझिम बारिश। अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। ये खेल एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक मास का नहीं है, एक साल का नहीं है, कई सालों का नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है, लंबे समय का अभ्यास। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। रुकना नहीं है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और एक ही प्रैक्टिस है, अशरीरी हो जाओ। इस शरीर ने पागल करके रखा है दुनिया को। विक्षिप्त है चेतना, दिन रात शरीर का ही चिंतन। शरीर, शरीर की दुनिया, शरीर की भाषा, शरीर का देश, शरीर के भोग, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर की वासनाएं, शरीर के संबंध, सब कुछ शरीर 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 से है। उस दिन दादी जान की कह रही थी, यदि बाप से प्यार है तो शरीर से अलग हो जाओ। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, लंबा समय तक अभ्यास। रुकना नहीं है। इस मार्ग में गिरना है, संभलना है, पर रुकना नहीं है। चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत कठिन मार्ग है। बाबा कहते डिफिकल्ट डिफिकल्ट और आसान ते आसान, दोनों है। तो दो पहरे लगाने हैं। पहला पहरेदार है अटेंशन और दूसरा है चेकिंग। ये दो चीजें हैं। चलते चलते आत्मा थक जाती, वही 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 सब कुछ उब जाती है, उदास हो जाती है। क्या हम करें जिससे ये उमंग उत्साह कम ही ना हो। कई लोग आते कहते, पहले जब हम ज्ञान में आए थे बस बहुत पुरुषार्थ करते थे, सीधा 2 बजे उठते थे, मुरली कई बार पढ़ते थे, दिन रात चर्चा करते थे, सेवाएं भी करते थे। अब क्या हुआ, अब पता नहीं क्या हो गया। जो शुरुआत में उमंग उत्साह था वो अब रहा ही नहीं। सेवा करते करते और सेवाओं के जंगल में ऐसे खो गए कि वो सेवा योग मुक्त और ज्ञान मुक्त सेवा है, जिसमें ना ज्ञान है, जिसमें ना योग है, केवल सेवा है। वो सेवा कम, सोशल सर्विस ज्यादा है, समाज सेवा है, वो सेवा नहीं है, कुछ और है। कहीं यही गति हमारी तो नहीं। एक भाई था जिसने इतनी सेवाएं की अपने जीवन में, बहुत सेवाएं की, भाग भाग कर सेवाएं की, पर ज्ञान और योग के लिए कभी समय नहीं था उसके पास। और एक दिन जब बीमार पड़ा और हॉस्पिटल में था और कोई सेवाधारी नहीं मिल रहा था, सेवाधारी था जो फिर छुट्टी पे चला गया, इतना उदास और इतना दुखी हो गया वो भाई। कुमार था, 30 साल भगवान की सेवा की, यज्ञ की सेवा की, दिन रात सेवा की, पर ज्ञान और योग से कोई मतलब नहीं, केवल सेवा। और जब बीमार पड़ा और कोई साथ में था नहीं, तो फिर इतना दुखी और सोचने लगा, इससे अच्छा तो ये होता है, मेरी अगर शादी हो गई होती तो पत्नी और बच्चे होते आज। और इसी उदासी के संकल्प में एक दिन शरीर छोड़ दिया। ये ना भूलना, सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। इस विश्वविद्यालय में सेवा 4th सब्जेक्ट है। अगर उसको 1st बना दिया। कुछ दिन पहले वरदान था, सेवा में ही वैराग्य नष्ट हो जाएगा। फर्स्ट ज्ञान है निरंतर ज्ञान का चिंतन, योग है सेकंड। कभी तो बाबा ने योग को फर्स्ट कहा है, और फिर चौथा है सेवा। मुंबई में नई नई प्रदर्शनी हुई और बहुत अच्छी प्रदर्शनी की, पहली प्रदर्शनी थी यज्ञ की, और अव्यक्त बाप दादा का दादी गुलजार के द्वारा संदेश आया। बाबा ने कहा बाप दादा बहुत खुश है, बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है, बहुत अच्छी प्रदर्शनी की, कईयों की बहुत अच्छी सेवाएं की, तन मन धन सब कुछ लगा दिया बच्चों ने। ऐसी सेवा देखकर बाप को भी फकूर है, मेरे बच्चे इतने महान हैं। एक पेज का संदेश था कि बाबा को बहुत खुशी हुई, और लास्ट लाइन थी संदेश की, बच्चों ने सेवा बहुत की पर सेवा करते हुए बाप को भूले हुए थे, फुल स्टॉप। क्या संदेश आया बाबा का, बहुत तारीफ की पेज भर, और लास्ट में कहा कि सेवा करते समय बच्चे बाप को भूले हुए थे। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए, और ऐसी सेवाओं में टकराव होगा, संघर्ष होगा, संस्कार टकराएंगे, डिससर्विस, द्वंद, अहंकार की लड़ाई होगी। इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। हर सेवा से पहले तीन चार चीजें चाहिए, नहीं तो वो सेवा सफल नहीं होगी। जो भी सेवा करे उसमें त्याग, तपस्या और वैराग, ये तीन चीजें हर सेवा से पहले चाहिए। ये तीन चीजें ही नहीं है सीधा सेवा में उतर गए, जिसमें ना त्याग है, ना तपस्या है, ना वैराग है, वो सेवा संघर्ष उत्पन्न करेगी और दुख का कारण बनेगी। इसके लिए अपने आप को अंदर ही अंदर त्याग से भरना है, तपस्या से भरना है, वैराग से भरना है। दादिया 14 साल तक बैठकर केवल तपस्या की, केवल ज्ञान चिंतन किया, बाद में सेवा के मैदान में उतरे, परंतु अभी समय बदल गया है, परंतु उसके बाद भी, उसके बावजूद हमारी अपनी आंतरिक सेवा तपस्या चालू रहे। और जब जब ऐसी भट्टियां हो तो समझना ये मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, इसमें बैठकर मुझे स्वयं को ठीक करना है। जो कुछ हलचल हो रही है जीवन में, अस्त व्यस्त हो रहा है, संघर्ष है जीवन में, उस सारे संघर्ष को ढूंढना है कहां से चालू हुए, क्यों हो रहा है। दिवस रात्र अम्हा युद्धासा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन, दिन रात युद्ध ही युद्ध है। अम्हा युद्धासा प्रसंग, ऐसी अवस्था है, क्यों ये संघर्ष है। और वो संघर्ष बहुत 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 सूक्ष्म है, उसको समझना है और उससे मुक्त करना है स्वयं को। तो डबल गार्ड, डबल गार्ड में बताया दो पहरेदार, पहला अटेंशन और दूसरा चेकिंग। अटेंशन किन बातों की, ऐसी 7 से 8 बातें हैं दिनचर्या की जिस पर अटेंशन देना है। और सबसे पहली बात है अमृत वेला। अभी सब मेरे हमारे तरफ देखते रहेंगे, कोई आजू बाजू नहीं देखेगा, और पिछले एक मास में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़ा करेंगे। इधर उधर नहीं देखना, आजू बाजू सामने देखते रहना, बाकी सब ने कर दिया। पिछले 15 दिनों में जिन्होंने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़े करेंगे। पिछले एक हफ्ते में जिन्होंने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़ा करेंगे। जिन्होंने आज ही अमृत वेला मिस कर दिया, पता था आज भट्टी के लिए जाना है, वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अपने आप ही समझ लो। सबसे पहली पहरेदार है अटेंशन, और अटेंशन में सबसे पहला अटेंशन किस पर देना है? अमृत वेला। ढूंढो कारण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नींद आ रही है, कुछ तो कारण होगा। हो सकता है रात में लेट सो रहे हैं, हो सकता है नींद पूरी नहीं हो सकी, हो सकता है कोई शरीर की बीमारी है, सारा ब्लड चेकअप करो, कोई अंदर बीमारी चल रही है, किसी विटामिन की कमी है, कुछ तो है। या हो सकता है आलस है, या हो सकता है अमृत वेले का ज्ञान ही नहीं है। अमृत वेले पर किताब है यज्ञ में, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कल से पढ़ना चालू करेंगे, जिस पर बाबा की, जिसमें सारे बाबा के वाक्य है संकलन अमृत वेले पर। एक मास तक बस वही किताब पढ़ते रहना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, जब तक अमृत वेले का संस्कार पक्का नहीं हो जाता। बाबा कभी मुरली में स्लोगन था, परमात्मा प्रेम वह अलार्म है जो अमृत वेला आत्मा को उठाता है, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही आत्मा उठेगी। मम्मा कभी 11 और 12 बज गए एक बार सोने के लिए, कोई गेस्ट आके, और फिर भी मम्मा अपने टाइम पर 2 बजे उठी, तो किसी ने कहा मम्मा इतना जल्दी आज क्यों उठ रहे हो, हम तो लेट सोए ना सब लोग। मम्मा ने कहा एक श्रीमत तो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूं लेट सोने की, अब क्या लेट उठकर दूसरी श्रीमत तोड़ दूं? ब्रह्मा बाबा का शुगर बहुत बढ़ गया था कभी, और बीपी फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन हो रहा था, तो सबने कहा बाबा को, डॉक्टर भी आए, वो जो सिविल हॉस्पिटल है माउंट में वहां के डॉक्टर आए, और उन्होंने कहा बाबा आप ये जल्दी उठना बंद कर दो कुछ दिन के लिए, थोड़ा रेस्ट करो। बाबा ने कहा ठीक है देखता हूं। फिर मनमोहिनी दीदी आई, और मनमोहिनी दीदी ने बाबा को समझाया बाबा आपको बिल्कुल कल आना नहीं है, तो बाबा ने कहा कि मैं इस डॉक्टर का सुनूं या उस डॉक्टर का सुनूं, किसका सुनूं? फिर भी दीदी ने कहा बिल्कुल नहीं, हम आपका बिल्कुल नहीं सुनेंगे, कल बिल्कुल आप दिखना नहीं चाहिए अमृत वेला, आपको रेस्ट करना है। तो बाबा ने कहा ठीक है ओके, ठीक है कह दिया बस। और दूसरे दिन अमृत वेला चालू हुआ हिस्ट्री हॉल में, और बाबा वो शॉल ऊपर लेके चुपके से आके पीछे बैठ गए। कितनी तड़प और कितनी लगन, 33 इयर्स की तपस्या में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, और हमारा एक मास में कितनी बार मिस हो रहा है, तो क्या कहेंगे क्या कहेंगे, कैसे शक्ति भरेगी आत्मा में? अमृत वेला ही मिस। इस भट्टी की सार्थकता तब होगी जब यहां बैठे बैठे आज ही संकल्प करो, कुछ भी हो जाए जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अमृत वेला उठने की विधि क्या है? रात को जल्दी सोना, यह विधि है। हम बार बार उदाहरण देते हैं और आपने भी सुना होगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जगदीश भाई हमेशा सुनाते थे, इंद्रप्रस्थ में आते थे मधुबन में माउंट अबू में। वो एक ऐसा व्यक्ति था, अभी अभी शरीर छोड़ा कुछ साल पहले, 100 वर्ष की आयु, 84 बुक्स लिखी है लॉ के ऊपर, वो माउंट अबू आते थे ब्रह्मा कुमारी इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट, बीच बीच में कई बार आए। उनकी आदत थी सुबह 2 बजे उठना, और उठकर अपनी लॉ की किताबें लिखते थे, अध्ययन करते थे और जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे या कुछ भी होते थे बीच से उठ के चले जाते थे, कहते थे हमको माफ कर दो, कहते थे हमको माफ कर दो, मुझे जल्दी उठना है, मैं इतना देर आपके प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। 9 बजे उठ के चले जाते थे, 9:30 बजे सो जाते थे। यह दिनचर्या थी उस व्यक्ति की। जगदीश भाई कहते हैं कि वो संसार का व्यक्ति संसार के कार्य के लिए इतना कटिबद्ध है, दृढ़ संकल्प है, हम क्यों नहीं है। तो सभी उठेंगे कल से, कितने बजे, कितने बजे? 4:30। बस 5 मिनट और, 4:05 बाकी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश का मौसम है, रजाई ऊपर ली हुई है। देखा घड़ी में, अभी 4:05 है। सोचा बस 5 मिनट सोता हूं, और 5 मिनट सोया और देखा तो 5 मिनट में 5 कैसे बज गए पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो गया। सबसे पहला अटेंशन इसके ऊपर देना है। पहले तो ज्ञान बढ़ाना है अमृत वेले के विषय में। बाबा के सारे महावाक्य पढ़ने हैं जो वो किताब में है, अमृत वेले के फायदे लिखने हैं बैठकर, और लेट उठने कर या न उठने के नुकसान लिखने हैं, चिंतन करना है एकांत में बैठकर। तो अपने आप नींद खुलेगी। और व्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला आत्मा को इतना परमात्मा प्रेम से भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार नहीं खींचेगा, इतना पावर भर दो उसमें। प्रातः स्मरा मृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम तद ब्रह्म निष्कलम अहम न च भाति भूत संघम। मैं ये भूत का संग नहीं हूं ये शरीर। प्रातः स्मरामी, सुबह सुबह उठकर सच्चित सुखम, सच्चा सुख इस आत्मिक स्थिति में स्थित होने का है, ब्रह्म मुहूर्त। और अमृत वेला कितने बजे चालू होता है? बाबा के कड़े महावाक्य है, संसार की आत्माओं की नींद होती है 8 घंटे, तुम्हारी कितनी होनी चाहिए? आधी। पर ये डायरेक्ट प्रयोग चालू मत करना, नहीं तो सारे दिन भर झुटके। भारत के प्रधानमंत्री कितना दिन, कितना देर सोते? इंटरव्यू है एक, पूछा उनको कितना घंटा सोते हो, उन्होंने कहा था, और ये भी पूछा कितना देर में आपको नींद आती है, उन्होंने कहा 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। और सोते कितना? 4 घंटा। और दिन में भी नहीं सोते। शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं है, आराम की आवश्यकता है, और आराम करने का एक मार्ग नींद है। अगर वही आराम किसी और चीज से मिल जाए तो नींद की भी आवश्यकता नहीं फिर तो। स्लीप मैनेजमेंट, इसलिए एक विधि है जिसकी यहां चर्चा नहीं करेंगे, पर आप उसके बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, योग निद्रा। मधुबन में कभी क्लास हुई थी इस पर, आर्ट ऑफ योग निद्रा। तो सबसे पहली चीज है जिस पर अटेंशन देना है वो कौन सा? अमृत वेला। भक्ति मार्ग में भी इसका गायन है और ज्ञान मार्ग में भी इसका गायन है। प्रातः काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नाव ही माथा। सुबह सुबह उठ के राम को दिखाया है, मात पिता के चरणों में नमन कर रहा है। दूसरा टेंशन मुरली, एक है घर पर बैठकर मुरली सुनना, एक है कार में मुरली सुनना, मोबाइल में मुरली सुनना, मोबाइल में पढ़ना, और दूसरा है सेंटर पर जाकर सुनना। दोनों में क्या अंतर है? सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मोबाइल में है। और क्या मुरली में है वो तो पहले ही पता है, बाप आए हैं पति से पावन बनाने, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, तुम्हें सेवाएं भी बहुत करनी है, सतयुग आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, बाप तुमको घर ले जाने आया है, बाप टीचर सदगुरु तीनों को तुमको याद करना है, केवल ब्रह्मा को याद करना। कोई कहते हैं ब्रह्मा से हमारा नहीं डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो, देह सहित देह के सर्व धर्म को छोड़ मुझ बाप को याद करो, यही तो सुनने जाना है, वहां जाने की क्या जरूरत है, हम घर पे ही सुनेंगे अच्छे से। एक ज्ञानामृत में कभी आर्टिकल आया था, मुरली न सुनने या पढ़ने के 108 कारण। मुरली सुनने जा रहे थे, घर में मेहमान आ गए, बारिश ज्यादा थी, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ढेर सारे कारण थे। एक है सेंटर पर सुनना, एक है घर पर सुनना। सेंटर में प्रवेश करना अर्थात एक वायुमंडल, एक ऊर्जा के वर्तुल में प्रवेश करना है, और वहां बैठकर और सबके बीच में बैठकर सुनना, इसमें अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति है। ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान कौन ज्ञानी नहीं है, यहां सभी ज्ञानी है, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। किसी भी ब्राह्मण को माइक दे दो तो चिट्ठी भेजनी पड़ती है, अभी बंद करो, बहुत हो गया, टाइम पूरा हो रहा है। ज्ञान सुनाने में एक से बढ़कर एक है, और बड़ा बेरहमी से ज्ञान सुनाते हैं, बहुत बेरहमी से। ट्रेन में बाबा ने कहा सेवा करो, पर कुछ कुछ ब्राह्मण अगर ट्रेन में कोई मिल गया और एक घंटे का समय है, एक घंटे के अंदर आत्मा से चालू करते और सीधा ब्रह्मचर्य तक ले जाते, बेचारा दुखी हो जाता है सुनकर। वो कहता है मैंने सुना है पहले से, वो कहता है तुमने होगा सुना, मैं सुनाता हूं, हमको अपनी प्रजा बनानी है, तुमको जो सुना होगा नहीं सुना होगा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से सब कुछ सुनाऊंगा तुमको, तुम आत्मा हो, ये परमात्मा, ये तीन लोक। बड़े ही बेरहमी से रहम करते हैं, तो सुनाने में तो सब होशियार है, पर केवल सुनाने से कुछ नहीं होगा, या सुनने से केवल कुछ नहीं होगा। मुरली में 5 शब्द है, MURLI, एम अर्थात मनन करना, उसका चिंतन करना, यू अर्थात अंडरस्टैंड उसको समझना, आर अर्थात पढ़ना, रीड एंड रिवाइज, पढ़ना भी और रिवाइज करना उसको, एल लिसन सुनना उसको, भगवान के महावाक्यों को सुनना, और कैसे सुनना, पूर्ण मनोयोग से, कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, ढूंढना उसमें, ये आज की मुरली में ये नई बात थी, वो नई बात थी। आई इनकलकेट अर्थात धारण करना, MURLI, 5 चीजें मुरली से रोज होनी चाहिए। तो सेंटर पर आना, वहां बैठकर सुनना, उस वायुमंडल में सुनना, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है, ये यूनिवर्सिटी है, ये पाठशाला है, ऐसी पाठशाला संसार में और कहीं नहीं है। आत्मा में बल भरेगा, शक्ति भरेगी, पावर भरेगी, और हो सकता है वो पूरी मुरली में 4 पेज की एक ऐसी बीच में लाइन आ जाए और हम बैठे और बैठे बैठे ही ऐसी टच हो जाए अंदर कि जीवन की जो समस्या 10 साल से जिस पर सोच रहे थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या करो, अचानक बाबा की टचिंग वहां होगी कि ये करो। और बाबा से जब हम बात करते तो क्या वो सुनता है हमारा कोई भी टॉक, कॉन्वर्सेशन, बाबा के साथ जो वार्तालाप है, बाबा हर वार्तालाप में सुनता है और वो इंटरवीन करता है। यज्ञ में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जगदीश भाई और कुछ दादियां और कुछ वरिष्ठ भाई बहुत समय कहीं सेवा के लिए जा रहे थे, कहीं उद्घाटन करना, कोई गवर्नर या किसी से मिलने, और वो निकल पड़े और लिफ्ट में थे और लिफ्ट में एक बहन थे या दादी, वो लिफ्ट में ही बाबा के पास चली गई और बाबा ने एक संदेश दिया, बच्चे तुम लोग एक चीज भूल कर जा रहे हो। क्या? माचिस। क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां कैंडल लाइटनिंग करनी है और वहां माचिस है नहीं, तुमको लेके जानी है। तो भगवान को इतनी छोटी छोटी बातें पता है, तो क्या उसको हमारे जीवन की बातें पता नहीं? वो हर चीज को जानता है। किसी भाई ने हिस्ट्री हॉल में बाबा से पूछा था, बहुत वरिष्ठ भाई कोई, बहुत पहले की बात, उसने पूछा बाबा को, सीधा अव्यक्त बाप दादा से पूछा, बाबा आपसे मैं रोज अमृत वेला बात करता हूं, आप कोई भी उत्तर नहीं देते, मैं रोज आपसे बात करता हूं आप कोई भी उत्तर नहीं देते हो। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा? बाबा ने कहा, बच्चे बाप से पूछे और बाप उत्तर न दे ये हो नहीं सकता, केवल तुम्हारे बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। ये बाबा का उत्तर था। तो पहला अटेंशन अमृत वेला और दूसरा अटेंशन मुरली। अभी और एक प्रश्न है, अमृत वेले के बाद सीधा बेड पर कौन कौन चले जाता है? अच्छी सी नींद किसको आ जाती है? अमृत वेला हुआ, पौने पांच बज गया कि बस अब आवाज आती है, आ जाओ मेरे लाडलो, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम स्वराग प्रभात में लाया हूं, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर। कौन पुकारता है? बेड। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, राजयोग की राहों में आ जाओ मेरे लाडलो। पुकारता है कि नहीं? कब अमृत वेला पूरा हो जाए, पौने चार, चलो सोने के लिए, और उठो फिर छह साढ़े छह बजे और फिर मुरली में जाओ। अमृत वेले के बाद का समय है चिंतन का, एक्सरसाइज का, वॉकिंग का, प्राणायाम का, मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भर देने का, किसी क्लास को सुनने का। क्योंकि जो सुबह हम पढ़ लेते हैं वही अंदर घुसता है, सारे दिन भर कितनी भी बार मुरली पढ़ो घुसती के अंदर मुश्किल है, सुबह सुबह सब अंदर चले जाता है। इसके लिए वो जो समय है चिंतन का समय है। मधुबन में हम लोगों का जो ग्रुप है उसका टाइमिंग है 5 बजे, 5 से 6, 6:15 तक क्लास चलती है डेली तीव्र पुरुषार्थियों की। वो ही तो समय है जहां पर चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, मुरली अध्ययन करना होता है, एकांत का अनुभव करना होता है, मौन का अनुभव करना होता है। उस समय अगर कोई सेवा भी है, सेवा करते करते झाड़ू पोछा जो कुछ है, बुद्धि में मुरली का चिंतन। अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट। तो इसको चेंज करना है। हमारा लौकिक भाई था, वो जब पढ़ाई करता था MBBS की, उसको बहुत नींद आती थी उठने के बाद, तो वो एक युक्ति करता था, जिस खटिया पे सोता था उठने के बाद, तुरंत उठने के बाद वो खटिया को, वो बिस्तर को लपेट के अलग वो खटिया को खड़ा करके रख देता था ताकि कौन वापस सब कुछ अरेंज करे, एक इधर एक को ऊपर फेंक देता था, नहीं तो थोड़ा सा उठने के बाद फिर से इच्छा होती है जाके सो जाओ। श्रेष्ठ चिंतन। तो पहला अटेंशन अमृत वेला, दूसरा अटेंशन अमृत वेले के बाद पोस्ट अमृत वेला, तीसरा मुरली, चौथा भोजन। पैसा कहां से आ रहा है? किस पैसे से भोजन बन रहा है। यदि वो पैसा किसी का शोषण करके बन रहा है, आ रहा है, दो नंबर का है, तो आत्मा शुद्ध नहीं होगी। एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, यदि भोजन बनाना और खाना दोनों बाप की याद में हो तो 50% प्यूरिटी अपने आप आ जाएगी। यदि भोजन बनाना और खाना दोनों बाबा की याद में हो तो 50% प्यूरिटी अपने आप आ जाएगी। पैसा कहां से आ रहा है? दूसरा, जाति दोष, भोजन में कोई दोष तो नहीं, कंकड़ पत्थर। तीसरा, भोजन बनाने वाले की मनस्थिति क्या है, किस विचारों से भोजन बना रहा है। यह सोच के बना रहा है कि बाबा के लिए बना रहा हूं, या यह सोच के बना रहा हूं यह भोजन जो भी खाएगा उसको बहुत टेस्टी लगेगा और पूछेंगे किसने बनाया, तो हम कहेंगे हमने, तो हमारी तारीफ हो जाए। इतना अच्छा भोजन बनाया किसने, ये भी नहीं बोला कि बहुत अच्छा बना, उदास। और चौथा, टाइप ऑफ फूड, सतो है, रजो है, तमो है। बहुत तीखा, बहुत उसमें मसाले और बहुत उसमें मिर्च और नमक और तेल, वो राजस है, वो सब कुछ। भोजन के ये चार नियम है, इसके लिए हिंदी में चौका कहा जाता है, रसोई। भोजन के और तीन नियम है, पहला, ऐसा भोजन ना हो जो उत्तेजना उत्पन्न करे। दूसरा, ऐसा भोजन ना हो जो आलस और प्रमाद उत्पन्न करे, खाने के बाद ऐसा लगता है बस सो जाओ। और तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो, जो भी खाए स्वास्थ्यवर्धक। ये तीन नियम भोजन के और चार नियम है। पहला, हंगरलेस ईटिंग, भूखी नहीं है पर खा रहे हैं। कहा जाता है मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जब उसको भूख नहीं रहती है तब भी खाता है, शेर और जानवर कभी नहीं खाते, पर व्यक्ति डालते जाता है, डालते जाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, आधा खुद का पेट भरता है और आधा डॉक्टर का। बहुत रहम है डॉक्टर पर कि डॉक्टर का भी पेट भरना चाहिए। दूसरा, ओवर ईटिंग, खाऊं खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं, दो दो घंटे में भूख लगती रहती है, अब ये खाया, अब वो खाऊं, अब वो खाऊं, अब वो खाऊं। उठते ही पहला संकल्प, नाश्ता क्या करना है, बाप को याद बाद में। संसार है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका, और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका, जिसमें हर चीज को क्या करते हैं, छोक लगाते हैं। सफेद चावल पसंद नहीं है, उसको तेल से डालो, अब ठीक है टेस्टी। दाल, उसको तेल से गुजारो, अब ठीक है दाल फ्राई है। हर चीज को तेल से जाने दो, छोक वाटिका ब्राह्मणों की। ओवर ईटिंग चौथा। तीसरा, क्रोध में खाना, अप्रसन्नता से खाना और जल्दी जल्दी खाना। भोजन की क्रिया भक्ति में कहते हैं वो प्रार्थना हो, तपस्या हो, अहोभाव से, धन्य भाग से खाना है। और एक योग का अभ्यास आपको बताएंगे, शायद करते भी होंगे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर खाना है, ताकि मैं जो जो खा रहा हूं एक एक आत्मा को जा रहा है, इस संसार की, इस सृष्टि की। चौथा रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, राजस और तमोगुनी। चार दोष है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी हम खाए क्या करना है, उसको भोग लगाना है। कितनी माता है यहां पर जो रोज भोग लगाती और बाकी चुबाओं को भूखा रख देती है? 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है जो भोजन बनाते हैं। और कितने भाई है जो रोज खुद अपना भोजन बनाते हैं? कम है। और जो नहीं बनाते और जिनको बना बनाया मिलता है, वो उसको शक्तिशाली दृष्टि दे, धन्यवाद करते हुए उसे स्वीकार करे। और जो लोग भोजन बनाने वाले हैं, वो 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प और फल भी मुझे कोई दे दे तो मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं। तो भोजन और भोग। अगला है ट्रैफिक कंट्रोल। सारे दिन भर में अटेंशन रखना है कि बीच बीच में मुझे क्या करना है, अशरीरी हो जाए। बोलते बोलते अशरीरी हो जाना, सुनते सुनते अशरीरी हो जाना, कर्म करते करते बीच बीच में आत्मा यहां से निकल जाए और फिर आए। यह सबसे बड़ा अभ्यास है। ब्रह्मा बाबा के अंतिम छह मास में बाबा एक वाक्य कहते थे, बाप इस तन में ऐसे रहता है जैसे यहां है ही नहीं। लोगों को लगा ये शिव बाबा बोल रहा है, बाप इस तन में ऐसा रहता है जैसे यहां है ही नहीं। पर वो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा के अनुभव बोल रहे थे। वो तपस्या थी। तो शरीर में आना और शरीर से जाना, ट्रैफिक कंट्रोल बार बार होते रहे। उसके बाद है अगला, जिस पर अटेंशन देना है सारे दिन भर, कर्मयोग। कुछ ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम फिक्स है 10:30, 12:30, 5:30, 9:30, पर अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करना है। दूसरा है कर्मयोग। कर्म करते समय उसकी विस्मृति न हो जाए जिसके लिए हम कर रहे हैं। जो कुछ करे उसको सौंप देना है। अगर कर्मों में आसक्ति रही तो फिर दुख होगा। डिटैच्ड कर्म, कर्म कर दिए और डिटैच्ड। अगला है नुमा शाम का योग। जैसे अमृत वेला शक्तिशाली है, नुमा शाम का योग भी शक्तिशाली हो। चाहे कोई ट्रैवल कर रहा है, ऑफिस में है, क्लिनिक में है, कोई जॉब कर रहा है, ट्रैवल कहीं पर भी है, 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30 उतना समय कम से कम अपने आप को बाबा से जोड़ देना है। और जिसको कोई काम नहीं है वो तो घर पर ही बैठ जाए, अपना एक आसन हो, नहीं है तो खरीद लो छोटा सा आसन, बाबा का ट्रांसलेट आसन, बैठाओ, नीचे रखो और बैठो, या फिर सोफा पर, कैसे भी। उसके बाद है ज्ञान की चर्चा। रात को सोने से पहले क्या होना चाहिए, हमारे मुख से ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है। जो घर में 1 से ज्यादा लोग ज्ञान में चलते हैं, वो साथ में मिलके, हमने ऐसे इतने सारे युगल देखे पति पत्नी जो ज्ञान में चलते हैं और इतना अच्छे से ज्ञान में चलते हैं, रात को सोने से पहले 9 बजे से 9:30 बजे तक मुरली डिस्कशन करते हैं आपस में दोनों मिलके। कितनी अच्छी बात है, जहां दोनों ही ज्ञान में है, सारा काम समेट कर बैठ कर मुरली डिस्कशन करते हैं, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन क्या था। और ऐसे बहुत सारे कुमार भी हमने देखे हैं, जो कुमारों का ग्रुप है संगठन, पांडव भवन, ऋषि गुफा, ऐसे ऐसे नाम देते हैं, वो भी रात को सोते से पहले ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। एक किताब है यज्ञ में, वार्यमय ब्राह्मण आत्मा, सुनिए। किताब का नाम वारे में ब्राह्मण आत्मा, मोटी किताब है लाल कलर की, उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य दिए हैं 14, और 14वां कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसके लिए डिस्कशन होते रहना चाहिए, आपस में ज्ञान की लेन देन करना, यहां तक कि जैसे रामनाथ भाई जी कहते हैं ना, किसी अज्ञानी को भी कहो कि आज हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी, ये नहीं बताना मुरली में सुनी, बाहर वालों को आज हमने सुना बहुत अच्छा, कम बोलो तो दिमाग की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, शॉर्ट और स्वीट बोलो, ये बात हमने आज कहीं ना कहीं सुनी, ऐसे बोलना किसी को। ज्ञान की चर्चा करने से आत्मा में ज्ञान के संस्कार निर्माण होंगे, ज्ञान स्पष्ट होगा। और लास्ट अटेंशन जो देना है वो है सोने की विधि। अच्छा, टीवी देखते देखते कौन सोता है? टीवी देखते देखते हमारे उधर एक भाई था, तो बीच में कौन सा टीवी में सीरियल चलता था, तो उसको पूछा कहां जा रहे हो, तो कहता था अशोक भाई की क्लास है। अशोक भाई? कौन सा अशोक? सम्राट अशोक, वो टीवी पे सीरियल था ना, वो क्लास रेगुलर। भोजन, एक भाई था वो कहता था हम टीवी भी देखते और बाबा को याद भी करते, दोनों चीजें साथ साथ, नीचे देखते हैं तो बाबा की याद, ऊपर देखते हैं तो टीवी, नीचे देखते हैं तो बाबा की याद और ऊपर टीवी, बैलेंस। ऐसा कोई बैलेंस नहीं होता है, धोखा है, धोखा, खुद ही को छलते हैं। तो रात को सोने से पहले क्या करना है, क्या करना है? सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा है सोने से पहले? यहां मैं और यहां बिस्तर, नींद। नींद और ब्राह्मण आत्मा के बीच एक बहुत बड़ी नगरी है, डिजिटल नगरी। जिसमें बहुत सारे काम करने हैं, किसी से बात करनी है, किसी को मैसेज भेजना है, गुड नाइट, अमृत वेला उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज, कितने लोग भेजते हैं? बहुत भेजते हैं। क्यों भेजना है? गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार, हैप्पी नुमा शाम का योग, कंटिन्यूअस भेजते रहते हैं। हैप्पी श्राद्ध, 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 हैप्पी श्राद्ध। वो भी भेजते, दुनिया भर की खबरें भेजते रहते हैं। कितना टाइम वेस्ट है। हमको कितना सारे काम करने हैं। रात को सोने से पहले कुछ तो अव्यक्त मुरली पढ़ दी, थोड़ा सा एक पैराग्राफ, एटलीस्ट लाइन एक, और जो मुरली सुनाने वाले हैं गीता पाठशालाओं में या बहने, उनको तो अगले दिन की मुरली पहले दिन ही पढ़नी है। सारा चार्ट बाबा को देना है, आज ये गलती हुई। योग करना है थोड़ा सा और फिर सोना है, और सोने से पहले ये सारे डिजिटल आकर्षण से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना है, क्योंकि सोते समय अंतिम संकल्प, उठते ही प्रथम संकल्प होता है, क्या देखकर हम सो रहे हैं, और जल्दी सोना है। अगर सेवाएं नहीं है तो जल्दी सोना है, सेवाएं है जिनको उनकी अलग बात है, पर जितना हो सके जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठो और फिर सारे दिन की शुरुआत भगवान के साथ हो। क्योंकि रोज रोज अगर अमृत वेला मिस होता है तो उदासी आ जाएगी एक दिन, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है यहां का। तो कितनी बातें हो गई है, सबसे पहला अमृत वेला, फिर उसके बाद में चिंतन, उसके बाद में मुरली, कहां पे आना है, सेंटर के वायुमंडल में आना है, उस श्रीमत के भी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में भोजन, याद में भोजन हो, समान के साथ भोजन हो, मौन में हो तो बहुत अच्छा। अगला ट्रैफिक कंट्रोल, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करो, जब भी समय मिले शरीर से अलग हो जाओ, ट्रैवल कर रहे, वेट कर रहे किसी के लिए, कुछ और कर रहे शरीर से अलग। उसके बाद में कर्म योग, कर्म करते करते बीच बीच में बाबा की याद और निस्वार्थ कर्म करने, जितना हो सके कर्मों को निष्काम करते जाना है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, मम्मा डेढ़ मास तक बेंगलोर में थी, बेंगलोर से वापस आई, मम्मा से पूछा मम्मा क्या क्या सेवाएं की, मम्मा ने कहा, मम्मा से पूछा सेवाएं कैसी थी, मम्मा ने कहा अच्छी थी, बस फुल स्टॉप। हम होते तो ये सारे फोटो है, सेवा थी पांच आधे घंटे की, फोटो है 500 और उसको भेज भी रहे दूसरों को, देखो हमने ये सेवा की, यही तुम्हारी सजा है, देखो सारे फोटो, खुद तो कुछ करते नहीं, अब हमारे तो देखो कम से कम। बड़ा चढ़ा के उसको बताते हैं, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, फुल स्टॉप, अच्छी थी। वो तो जो भाई साथ में गया था उसने बताया ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, बाबा ने कभी अव्यक्त में कहा है, सेवाएं की और उसका बहुत वर्णन किया कि कमाई चट। अपनी सेवाओं को गुप्त करते जाओ और अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाओ। हां, सेवा के हिसाब से सेवा समाचार सुनाना वो इस यज्ञ का एक नियम है, पर वो सेवा समाचार भी कैसे सुनाए, निरंकारिता से, नहीं तो वो सेवा का समाचार कम और मैं का समाचार होता है। कौन सा समाचार होता है, मैं का। तो ऐसी ये कितनी बातें हुई, फिर नुमाशाम का योग, मुरली चिंतन या डिस्कशन और रात को सोने की विधि, 7-8 बातें हैं, इन सब का अटेंशन रखना है। और रात में उसी के साथ दूसरा जो पहरेदार है, चेकिंग, अपनी चेकिंग करनी है, बहुत कड़ी चेकिंग करनी है अपनी। दूसरों की चेकिंग हम बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी कम करते हैं। सभी लोग दूसरों पर PhD करने में लगे हैं और अपना ग्रेजुएशन इधर पूरा नहीं हो रहा है, दूसरों पर पूरी रिसर्च है, इसको नींद कब आती है, इसको झुटका कब आता है, यह आज मुरली में नहीं था वगैरह 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 वगैरह। तो दो पहरेदार है, डबल गार्ड है, अटेंशन और चेकिंग, सभी अलर्ट होके बैठेंगे।